अब इसका ज़रा सा दूसरा रुख देख लीजिए। शुक्र है, बस तस्वीर का दूसरा रुख है ये। एक तरफ सब्र था ना, तो दूसरा शुक्र है। सी सौ में हम में से हर एक ज़िंदगी में कभी एक हाल में होगा तो कभी दूसरे में होगा, ठीक है। एक हाल क्या है? दुख तकलीफ। तो दूसरा क्या आ जाएगा? खुशी। तो शुक्र क्या है? जानवर का थोड़ा चारा खाकर दूध ज़्यादा देना, ये डिक्शनरी की तारीफ है। शुक्र क्या है कि अल्लाह ने आपको कम तो कभी दिया ही नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कम दिया है फिर भी खूब नेकियां कीजिए। स्किल्स कोई नहीं है आप में, फिर भी आखिरी हद तक अल्लाह के रास्ते में खप जाएं, ये शुक्र है। और शुक्र है एहसान मंदी, नेमत को मान लीजिए। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उसके ऊपर राजी रह लीजिए। और ये भी याद रखिए कि शुक्र करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। पहली बात है कि शुक्र करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है कुरान में, कहाँ? सूरत अल आराफ 144, 144, वकुम मिनश्शाकिरीन, और शुक्र करने वालों में हो जाओ। कुन क्या है? हुक्म है ना, हो जा, तो आपको मुझे होने का हुक्म है। दूसरी बात है, शुक्र करने से अल्लाह भी आपकी कदर करेगा। सूरत बकरा 152, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। फिर अगली बात लिखिए, शुक्रगुजार हिकमत वाला इंसान होता है। या आप ये लिख लीजिए कि हिकमत वाला होने की दलील है कि आप शुक्रगुजार हैं। इसकी दलील लुकमान 12, वलकद आतैना लुकमान अल्हिकमता अनिशकुर लिल्लाह, और हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाओ। व मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, ये अगला जुमला लिख लें। जो शुक्र करेगा उसका शुक्र उसी के फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि जो शुक्र करेगा अपने लिए करेगा। वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जो कुफर करेगा तो बेशक अल्लाह बेनियाज है। अगला पॉइंट लिखिए, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। सूरत इब्राहिम आयत 7, व इस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, और जब तुम्हारे रब ने पुकारा कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। जैसे दुनिया में भी किसी की चीज़ लेकर उसको अच्छा जवाब दें, उसको इस्तेमाल कर लें, उसके शुक्र गुजारों, तो अगला और भी देने लगता है। और अगला बड़ा ही दुखी जुमला लिख लीजिए, इंसानों की अक्सरियत शुक्र गुजार नहीं है। कहाँ लिखी है ये बात? सूरह सजदा आयत 9, कलीलम मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो शुक्र करते हैं। और अगला जुमला लिख लीजिए, जो अल्लाह का शुक्र गुजार नहीं वो लोगों का भी नहीं, और जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं वो अल्लाह का भी नहीं। हवाला है अबू दाऊद 4811, ला यशकुरुल्लाह मल्ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता या दिल से कदरदान नहीं है जब लोग उसके साथ कोई नेकी एहसान करें, तो अल्लाह कभी शुक्र गुजार नहीं है। और अगली रिवायत तो इतनी खूबसूरत है, नोट कीजिएगा, अहमद 1849, जिल्द नंबर 30 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम यशकुरिल कलील लम यशकुरिल कसीर, जो थोड़े पे शुक्र नहीं कर रहा ना वो कल ज्यादा पे भी शुक्र नहीं करेगा। सच है कि झूठ? जितना मिलता जाए वो कहेंगे हक है, ये भी थोड़ा है और मिले, नहीं वो दूसरे को ज्यादा मिला, नहीं मुझे उससे भी अच्छा मिलना चाहिए, नहीं उसको ज्यादा प्यार किया मुझे कम किया, उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया मुझे कम किया, तो बस अब घर बैठे आप खुश नहीं होंगे। और दूसरी बात, वमल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह वतहद्दुसु नेमतिल्लाहि शुक्र, बीच का जुमला तो वही था जो पिछली हदीस में भी था कि जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं वो अल्लाह का भी नहीं, और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है। वतर्कुहा कुफ्रुन, और इनको छोड़ देना ना शुक्रिय चीज़ है, इस्तेमाल ही नहीं करते ना शुक्रे आप। आपको कोई देता है कोई चीज़ और आप कहते हैं हमारी स्टैंडर्ड से तो बड़ी गिरी हुई है, ना शुक्रे, तो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कीजिए, शुक्रगुजारी होगी। और अगला हिस्सा है हदीस का, वल जमात रहमतूं वल फुरक़तु अज़ाब। इसको तो मैं कहती हूँ छोटे छोटे पर्चों में डालकर 2 बिलियन में प्रिंट कराकर आज हर मुसलमान के हाथ में दे दीजिए। हदीस कहाँ आई है जाके खुद पढ़िए, इसके अल्फाज क्या है, वल जमात रहमतुन वल फुरक़तु अज़ाब। फरमाया अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और इनको छोड़ देना ना शुक्री, और जमात पर रहमत और फ़िरकाबंदी अज़ाब है। अल्लाह हमें इज्तमाईयत का सबक दे रहा है इस हदीस में शुक्र सिखा कर। और याद रखिए अगली बात शुक्र पे लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा शुक्र गुज़ार अल्लाह के नबी सल्लम थे। बुखारी की रिवायत 1130 किताबु तहज्जुद, अफला अकून अबदन शकूरा। जब रातों को क़याम करते नमाज पढ़ते पाँव पे वरम आ जाता, लोग कहते आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते क्या भला मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ, यानी अल्लाह ने जो मुझ पे नेमते की हैं मैं उसका हक ना अदा करूँ। और याद रखिए एक और बात जो बहुत अहम है, शुक्र के बाप में जब कोई नेमत मिले तो सजदा शुक्र कीजिए। अबू दाऊद 2774, अबू बकरा से, बकर नहीं है अबू बकरा, ये डिफरेंट सहाबी थे। अन्नहु कान इज़ा जाहु अम्रु सुरूरिन और बुशिरा बिही। अल्लाह के नबी को जब कोई खुशी की बात या खुशखबरी की बात सुनाई जाती, खर्रा साजिदन शाकिरल्लाह, तो आप शुक्र करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। और अगली हदीस सुनकर तो आप सारे ही खुश हो जाएंगे, क्या कि खाकर शुक्र करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के बराबर है। इब्ने माजा की रिवायत है किताबु सियाम 1764, अत्ताइमु शाकिरु बिमंजिलति साइम साबिर। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के दर्जे पाता है। कितना आसान है आपके मेरे लिए इन चीज़ों को देखना। चलिए अगला जुमला लिखिए, असल शुक्र फिर क्या है, शुक्र की हैसियत क्या है, यानी अगर आप शाकिर हैं तो आपका क्या मुकाम है अल्लाह के यहाँ। इब्ने माजा 1856 किताबु निकाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात हो रही थी। कहते हैं सुबहान के जब सोने चांदी के बारे में कुरान में नाजिल हुआ तो लोगों ने कहा कि हम कौन सा माल रखें, सोना खरीदें चांदी खरीदें क्या करें। तो हज़रत उमर कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, खुद नहीं बताया फिर रुके, फिर अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया, इल्म के लिए निकले और नबी तक पहुँच गए। और हज़रत सुबहान कहते हैं कि मैं इनके पीछे बैठा हुआ था। हज़रत उमर अल्लाह के नबी के पास पहुँच गए और कहे अल्लाह के रसूल हम कौन सा माल रख सकते हैं, यानी सवाल वहाँ पूछा था, जवाब देने से पहले कॉन्फर्मेशन कर रहे हैं का क्या करें। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा होगा, सोना अच्छा है उसका रेट बढ़ रहा है ले लो, और कभी ना कभी तो बिकेगा, चांदी ले लो गोल्ड ले लो डॉलर रख लो उसका रेट ऊपर है, सोचते हैं ना। लिखिए ज़रा आपकी वर्थ ये है, सोने चांदी तो जो हाथ का मैल है। फरमाया लियत तखिज़ अहदुकुम, चाहिए कि तुम में से हर एक को के वो ले पकड़ ले, यानी अपने लिए गोल बनाइए, ये चीज़ें अब आपकी करेक्टर बिल्डिंग की हैं। नंबर ए कल्बन शाकिरन, शुक्र वाला दिल मांगे अल्लाह से। वलिसानन ज़ाकिरन, ज़िक्र वाली ज़ुबान। वज़ौजतन मोमिनतन, और ईमान वाली बीवी। वतुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरती, और तुम में से हर एक को क्या चाहिए, वो बीवी जो के आखरत के मामलों पे नज़र रखे, ईमान वाली बीवी जो आखरत वाली हो। और ज़ाहिर है कि बीवियों को कहते तो मर्दों के लिए यही हुक्म आना था, तो आपको क्या दौलत जमा करनी है, कल्बन बोलिए 3 दफ़ा बोलें, तो अल्लाह से कैसे मांगेंगे, रब्बना आतीना कल्बन शाकिरन, रब्बी आती कल्बन शाकिरन, उर्दू में मांग लें अल्लाह कल्बे शाकिर दे दे। आज से मांगना शुरू कर दें, देखिएगा फिर आप उछलेंगे, वो कहते हैं कि आपके दिल में लड्डू फूटेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपको खुशी क्या मिली हुई है। शाकिर बंदा ही तो खुश रहता है, उसी के चेहरे पे तो स्माइल है, वही तो इजी गोइंग है, वही तो रिलैक्स्ड है, बाकी तो सिर्फ दुनिया में बेकार जी रहे हैं। बिलीव मी, अगर शुक्र नहीं है तो खुशी नहीं है। शुक्र इज इक्वल टू शक्कर, लफ्ज़ बदल लें, शक्कर शुक्र लफ्ज़ ऐसे ही है, सिर्फ आराब बदल लीजिए, शक्कर शुक्र और काफ को पीछे ले जाएं और रा पहले ले आए तो शिर्क बनता है। मुशरिक सबसे बड़ा नाशुक्रा शख्स है, बिलीव मी। और एक और रिवायत लिख लीजिए फिर, बहकी की रिवायत है सुनन अल कुबरा में 14720, बड़ी ख़तरनाक हद तक खौफज़दा करने वाली बात है। ला यंज़ुरुल्लाहु इलल मराती, अल्लाह उस औरत की तरफ क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। ला तशकुरु ली ज़ौजिहा, जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है। वहिया ला तस्तग़नी अन्हु, जबकि वो इससे बेनियाज रह ही नहीं सकती। यानी बीवी शौहर के बगैर नहीं जी सकती, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नाशुक्रियाँ ही करती हैं अक्सर। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। कभी भी अच्छे शौहरों की नाशुक्री ना करें। अगर शौहरों में कोई बुरी आदतें हैं तो उसको सब्र के साथ बदलने की कोशिश कर लीजिए। और एक और बात नोट कर लें, और वो क्या है, बुखारी की रिवायत 1048, अल्लाह के नबी सल्लम से रिवायत है, अल्लाह के नबी की बात पेश करती हैं हज़रत अस्मा बिनते यजीद, कहती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ थी कि अल्लाह के नबी मेरे पास से गुज़रे तो आपने हमें सलाम किया। इससे पता चलता है कि एक मर्द भी औरतों को सलाम कर सकता है। और फरमाया, सुनो नेमत देने वालों की नाशुक्री से या एहसान फरामोशी से बचना। कभी भी उस बंदे की नमक हरामी ना करे जिसने आपको नमक दिया। आपकी मेरी जुबान की बात थी। हदीस क्या है, इया कुन्ना व कुफरल मुनएमीन, जिसने भी आपको कोई नेमत दी कौन देता अल्लाह के बाद, अल्लाह तो है ही है। माँ बाप हैं मुनिम होते हैं, मुनमे हकीकी कौन है, अल्लाह। और मजाजी कौन से हैं, पहले माँ बाप। हमें तो जिसने भी खैर दी वो हमारे मुनिम है ना, फिर शौहर, शौहर के घर वाले, हर एक के ऊपर ये बात याद रखिएगा। अब ये बात सुनी ना तो ये अस्मा बिनत यजीद कहती है, मैं बड़ी तेज़ थी, सवाल बड़े पूछती थी, मैंने फौरन पूछा अल्लाह के नबी नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या, तो आपने फरमाया तुम में से हो सकता है कोई औरत लंबा अरसा अपने वालदैन के घर रहे फिर अल्लाह उसको शौहर नसीब करे और इससे इसको औलाद भी अता करे, फिर किसी बात में गुस्से में आकर वो नाशुक्री करे और कहे मुझे तुझसे कभी कोई भलाई नहीं मिली। अल्लाह अकबर, इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन। अल्लाह आपको मेरे अंदर शुक्र भर दे। बिलीव मी, ना शुक्रा बंदा सबसे ज़्यादा नाकाबिले यकीन इंसान है। बच के रहिए ना शुक्रों से, छोड़ दीजिए उनको, वरना आप भी ना शुक्रे हो जाएंगे। और जो कभी मोहसिनों का हक नहीं पहचानता वो कुछ नहीं, जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें, ये ईमान वाले की पहचान नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि अपने अंदर शुक्र लाएं। और उसके बाद फिर जो मेरी समझ में, ये जो मैंने तरतीब दी ना ये मैंने खुद दी है, मैं अपने दिल दिमाग से सोच रही थी आप अच्छा किसको कहते हैं। सबसे बंदा सब्र होना चाहिए। बेटी का रिश्ता आ गया ना, सब्र देखिए लड़के का, फिर शुक्र देखिए, और इसी तरह लड़कियों को ले लीजिए और जिसको भी, जहाँ जिससे आपको मामला करना है। दो बंदे सेम चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं, सेम ऑप्शंस हैं दीन दुनिया की, किरदार देख लीजिए मुकाबले में खड़ा कौन है, साबिरा है शाकिरा है, मामला कर लीजिए। और तीसरी खूबी नरमी, बी फ्लेक्सिबल, नरम मिजाजी हो। और नरमी वो देती है जो सख्ती नहीं देगी आपको मुझे। चंद रिवायतें पहले नोट कर लीजिए, नरमी कौन सी कहाँ कैसी ये भी फ़र्क है। देखिए नरमियाँ बहुत सारी होती हैं, रेशम भी नरम है ना, उसकी नरमी कोई और है, एक ज़ुबान की नरमी है जिससे मना कर दिया। कब, जब औरत मर्द से बात कर रही है, ला तहदाना, सूरत अल अहज़ाब में आप जाके पढ़ेंगे या पढ़ चुके। नरमी क्या है, आप देखिए कि मामलों का इजी गोइंग होना। मैं नरमी को क्या लेती हूँ, कुछ लोग होते हैं स्टबन, सुनने को तैयार ही नहीं, सुनाना चाहते हैं, मानने को तैयार ही नहीं क्योंकि मनवाना चाहते हैं, और वो आपको अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं। नरमी या नरम मिजाजी क्या है कि दूसरे जब आपके साथ मामला करें तो जा करके मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन याद रखिए, नरमी से मुराद मोम की नाक भी नहीं है। मैं तो इसको अगर सहाबा की शान में जो कुरान में कहा गया ना वही कह दूँ ना कि अशिद्दा उलल कुफारी वरहमाउ बैनहुम, इसी में आगे रहम भी आएगा, उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, ये सारी खूबियां मिली हुई हैं। आप जब इंशाल्लाह ये अखलाक की पूरी तस्वीर बनाएंगे ना, इतना प्यारा इंसान आपके सामने आएगा कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो नरमी क्या है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। सूरत शोरा 215, वक्फ़ जनाहक लिमन तबाक मिनल मोमिनीन। ये है हम दीनदारों को एक नसीहत अल्लाह की तरफ से, बल्कि हुक्म है कि जो अहले ईमान आपकी तरफ आए, आपकी पैरवी करें, तो इनके लिए अपने बाजू झुका दें। मैं इसको अपने ऊपर लेके बताती हूँ। जो दीन सीखने आ रहा है, जो कहाँ से उठ के चल के निकला, आप उनके आगे अपने बाजू फैला दें। कदर कीजिए ऐसे लोगों की, चाहे उनके हाल हुलिये बुरे ही हों। आपको क्या लगे, अभी आपने बता क्या दिया उनको, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? यानी वक्फ जनाह कलिमन तबा का, नबी को कहा जा रहा है, आज मुबल्लिगीन को कहा जा रहा है, आने वालों के दिल ना तोड़ो, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करो या उनको डिस्करेज ना करो, एनकरेज करो। हम बाज़ दफ़ा दीन के लिए इतनी सख्तियाँ लगा देते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये गेटअप नहीं वो गेटअप नहीं है, और किसी ने इसकी गवाही दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गवाही आपके सामने रख देती हूँ। आज बहुत अच्छी दीन की साथी हैं, और जब वो शुरू में आती थी तो स्लीवलेस में आती थी, और वो क्यूलॉट्स कहते थे उस दौर में, घुटनों से ऊंची पैंट्स, और सुकड़ के बैठती थी पीछे, और वो कहती हैं कि मुझे कभी भी वहाँ बैठकर ये फील नहीं हुआ था कि आपने मुझे कभी लेट डाउन किया हो। खुद ही चंद दिन के बाद वो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई थी अपनी एक दर्स में। कहती है कि फिर वब जहाँ वब नमाज का वक्त हो जाता था क्लास में, तो कोई चादर कोई बड़ी चीज़ मुझे पेश की जाती थी कि आप ये पहन लें। फिर दो चार दफ़ा के बाद मुझे खुद ही शर्म आने लगी कि क्या हाल हुलिया बना कर जाती हूँ। तो फिर मैंने विद स्लीव्स शर्ट पहननी शुरू कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैंट जो थी वो लंबी होती गई, कपड़े ढीले होते गए। टाइम दीजिए, क्या डॉक्टर ये कहेगा कि मेरे पास कोई बीमार ना आए, तो फिर आपके पास क्यों आएंगे वो? याद रखिए, दीनदारों के दिल खुले होने चाहिए। किन के लिए? जो न्यू कमर्स हैं, उनको तो आप समझिए मुहाजिर, वो तो बेचारे पता नहीं क्या क्या छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, जो दिन ब दिन आगे चलता गया फिर वो अंसार बनेगा। और आपको भी अपनी दोस्तों को कभी फतवे नहीं देने चाहिए कि आप ये ऐसी वैसी, मैं वैसी वो आप ऐसे, ये नहीं है। असल बात ये है कि आप अपने अंदर झांकिए, कल आप क्या थे, अपने ऊपर देखिए। तो हमेशा याद रखिए, लोगों के लिए वेलकमिंग, रूल्स की सख्ती, ये आइए साइन कीजिए, इधर आठिए, ये लिसनर्स की जगह, ये रेगुलर्स की जगह है, अस्तग़फिरुल्लाह। नए बंदे की वो जगह होती है जो सबसे टॉप मोस्ट जगह होती है स्कूल में। कभी नए लोगों को कभी दिल ना तोड़ें, आपके रूल होंगे, वो इल्म की तलब में आ गया है। अल्लाह ने एक नाबीना शख्स के बारे में अल्लाह के नबी को किस तरह से पॉइंट आउट कर दिया कि देखिए, अगर एक नाबीना आ गया तो आप उसको लीजिए, क्योंकि वो आपके पास कुछ सीखने आया है, चाहे सामने बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। तो क्या पता चला कि आने वालों को वेलकम कीजिए, और यही अंदाज़ आपका होना चाहिए मेहमानों के लिए, यही अंदाज़ आपका होना चाहिए मिलने जुलने वालों के लिए। और सूरत मायदा 54, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पर बड़े नरम, और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर बड़े सख्त होने चाहिए। कौन? मोमिन। ये है मोमिन की खूबी। आज हमारा हाल क्या है, सबसे बुरे हमें मोमिन लगते हैं मौलवी, और कुफार तो इतने डिसेंट और इतने अच्छे लगते हैं। अब इससे ये भी नहीं मतलब कि इज़्ज़त इन अलल काफ़रीन का कि हम डांटें और उनको गालियाँ दें, मुराद है कि असूलों में फर्म हो जाएं। और अगली बात नरमी पे, अल्लाह जब किसी घराने के साथ बिखतरी का भलाई का फ़ैसला करता है, उनको नरमी देता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है 24427, यानी 24427 जिल्द 40 है। फरमाई, इज़ा अरादा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बि अहली बैतिन खैरन अदखल अलैहिम रिफ़्क़, कि अल्लाह जब किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। और अगला नुक्ता नोट कीजिए कि जिसको नरमी दी गई उसे खैर का हिस्सा मिला, और जो नरमी से महरूम कर दिया गया वो खैर से महरूम रहा। तिरमिज़ी 2013, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है, मन ऊतिया खज़्ज़हू मिन रिफ़्क़ी, जिसको नरमी से हिस्सा दिया गया, फ़कद ऊतिया हज़्ज़हू मिनल खैर, उसको खैर का हिस्सा दिया गया। ومن حرم حظه من الرفق، جس کو رفق کا حصہ دیا گیا، فقد حرم حظه من الخیر، یعنی جس سے نرمی چھین لی گئی اس سے خیر چھین لی گئی. اور یہی بالکل الفاظ مسلم میں 6598 میں بھی ہیں. حضرت جریر کی روایت سے حضرت عائشہ کے ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا، روایت نوٹ کیجئے، مسلم 6601، یا عائشہ تو، اے عائشہ، ان اللہ رفیق، اللہ نرمی والا، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، ویوتی علی رفقی، اور عطا کرتا ہے نرمی پر، ما لا یوتی علی لنفی، جو نہیں عطا کرتا سختی پر، وما لا یوتی علی ما سواہو، اور جو نہیں عطا کرتا اس کے سوا کسی اور چیز پر. اور یہ کب ہوا تھا آپ کو پتا؟ جب حضرت عائشہ نے ایک یہودی کے سلام کے جواب میں ذرا لفظ بولے. یہود جو آتے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس تو ذرا سی آواز دبا کر کہتے سام علیک، سام کیا نہیں مطلب موت، زہر آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا علیکم، تم پر بھی، بس اتنا کہہ دیا. عائشہ سمجھی کہ اللہ کے نبی نے کوئی تھوڑا کہا ہے، کہنے لگی سام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. اللہ کے نبی نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ سبق علیہ کی بھی رفقی، نرمی اختیار کرو، ویا کی، اور دیکھو، یعنی حضرت عائشہ نے جب اس طرح سختی کی تو اللہ کے نبی کہا، عائشہ نبی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا؟ تو کہا تم نے نہیں سنا میں نے اس کو کیا کہا، اس نے مجھے کہا سام علیک، میں نے کہا ولیک، سیم ٹو یو، ویا کی، ویا کا. تو کیا پتہ چلا کہ بہت بڑی بات کہنے سے چھوٹی کہہ دی. پھر آپ نے کہا عائشہ میری بات اللہ نے ان کے حق میں قبول کی ہے، ان کی بات میرے حق میں قبول نہیں کی. تو کیا پتہ چلتا ہے، اور یہ بخاری کے الفاظ 6401 کے ہیں، کیا پتہ چلتا ہے کہ نرم متی ہیں، لوگوں کے لیے روڑا نہ بنے. پھر مجھے اپنے والدی کی بات یاد آتی ہے، کہتے تھے کبھی وہ کنکر نہ بنو جو ساری دال پکنے کے بعد بھی نہیں گلتا. اپنے ساتھ والوں کے لیے کنکر مت بنو. ہر وقت کچھ لوگ کوسچن مارک بنے رہتے ہیں، کیوں، کیسے، کب، وائے، ریلیکسڈ. دیکھیے اجتماعی زندگی میں اس کی بہت ضرورت ہے. ایک ہے رولس ریگولیشنز، وہ اپنی جگہ ہیں، اس میں تو پھر آپ نے اشداؤ علی الکفار بننا ہے، لیکن زبان نرم. وہ کہتے ہیں نا نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کے بزم ہو، پاک دلو پاک جو. یہ بیسٹ لیڈرشپ. بیسٹ لیڈر کون ہوتا ہے؟ نگاہ بلند، اونچا دیکھتا ہے، ہائی آپٹم، وہ لوگوں کو بڑے خواب دکھاتا ہے. کیا؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، باتیں نرمی کی، زبان نرم رکھیے، اور جاں پرسوز، اندر آگ لگی ہوئی ہے، فاللہ کا باقی نفسہ کا، کچھ کرنا ہے لیکن زبان نرم. ہم جب اندر کی گرمی کو باہر کے لفظوں کی سختی میں لے آتے ہیں، ہمارا سارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، اوور ہیٹ ہو جاتی ہے چیز. اندر گرمی باہر نرمی، اور زبان شیری ملک گیری. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت 6602، ان الرفق لا یکون فی شیئن الا زانہ. نرمی کسی بھی چیز میں جب آتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دی جاتی ہے، یعنی جس چیز میں نرمی آئے گی وہ خوبصورت ہوگی. ولا ینزع من شیئن الا شانہ، اور جس سے نرمی چھین لی جائے وہ اس کو عیبدار کرتی ہے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، نرم کپڑے کے کھردرے، نرم جوتا کے سخت جوتا، نرم کمبل کے سخت، بتائیے، نرم چاہیے نا. تو آپ بھی لوگوں کے لیے نرم بنے، دلوں پہ مرہم بنے. مرہم کتنا نرم ہوتا ہے، اور اگر مرہم چبھنے والا ہو، ٹینکچر ہوتا ہے نا، کتنے لوگ جو ٹینکچر اور مرہم میں سے ٹینکچر کو قبول کریں گے. بعض دفعہ ہم تبلیغ میں ٹینکچر والی باتیں ہو جاتے ہیں. نرمی، اور نئے لوگوں کے لیے خاص طور پہ یاد رکھیے. اور اگلی بات نوٹ کر لیجیے، کس شخص پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ جہنم کی آگ کس پہ حرام ہے، یعنی اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں. ترمذی کی روایت ہے 2488، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آپ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، کس بات کی، بیمن یحرم علی النار، اس شخص کی جو آگ پر حرام ہے، او بیمن تحرم علیہ النار، یا اس پر آگ حرام ہے، یعنی یا وہ آگ پہ حرام ہے یا آگ اس پہ حرام ہے، بات تو ایک ہی ہے نا. پھر آپ نے خود ہی کہا، الا کلی قریب حَيِّنٍ سَهْلٍ. تین خوبیاں. نمبر ایک, ہر وہ شخص جو قریب, کس کے قریب ہے اب آپ خود دیکھ لیں, اللہ کے قریب ہے کہ دور ہے, رسول کے قریب ہے کہ دور ہے, دین کے قریب ہے کہ دور ہے, آپ کے قریب ہے یا آپ سے دور ہے, یہ آپ خود دیکھیں. دوسری بات, نرم خو, اور تیسرا آسان ہو, سہل. اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے آسان بنے. بلیو می, کوئی مجھ سے پوچھے یہ غم, سب سے مشکل مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جو ایزی گوئنگ نہیں ہوتے, سٹبن, روڑے, پتھر, رکاوٹیں, برداشت ہی نہیں ہوتے. اتنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنا کہ واقعی والی ربی کا فصبر, صرف اللہ کے لیے بندہ ان کو برداشت کرتا ہے, کیونکہ اگر ذرا سی 19-20 بات آگے پیچھے ہو گئی یہ کچھ اور ہی کر جائیں گے. صبر کر لیں. اور یقین کریں نفس السلم کی یہ خوبی, میں نے جب پڑھا سیرت کو, آپ کو تک کہ شخصیات ہوتی ہیں نا, پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ہر صحابی خوبصورت ہے, ہر ایک ستارہ ہے, لیکن چند صحابہ, میں اب نام نہیں لوں گی کیونکہ شاید آپ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگیں, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے, لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ صرف اللہ کے نبی تھے جنہوں نے دو لوگوں کو ساتھ رکھے رکھا اپنے, یعنی اپنے سے بھی نہیں کاٹا اور آپس میں بھی جوڑے رکھا. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں ایک نیام میں جس طرح دو تلواریں نہیں جاتی نا, اس طرح یہ دو صحابی اکٹھے رہ نہیں سکتے تھے اگر اسٹرانگ لیڈر نہ ہوتا سر پہ, لڑنے کو تیار. اور وہ اکثر اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے جن کو جو کر لو ٹھیک ہے, جو بھی ہے جی ٹھیک ہے, ان کی ہر بات میں کیوں, وائے, ایف, وٹ, 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 وائے, وتھ می, اتنے کوشچننگ لوگ. لیکن ایک اچھا لیڈر ایسے لوگوں کے فائدے کی خاطر ان کو برداشت کرتا ہے, ان کو ٹیم کرتا ہے, اور یہ صرف اللہ کے نبی تھے. اگر آج آپ اور میں سیرت کے اندر کھو گئے نا, تو پھر انشاءاللہ ہم ایک اچھی ٹیم بلڈ کریں گے. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ باتیں ایک لیڈر بننے اور لیڈرشپ کے لیول پہ آئے ہوئے شخص کے لیے کتنی ضروری ہیں. بعض ہم اپنی غیر حکمت عملی کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں, اور کئی بیکار لوگ, ان کو ہم کارآمد بنا سکتے ہیں جب ہمارے اندر ہیلپ آ جاتا ہے. دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں نبی جیسا کردار دے دے. آج بھی دنیا میں مسلمان ہیرے ہیں, جواہرات سے قیمتی, لیڈر کوئی نہیں ہے ابھی, کسی کے ہاتھ نہیں لگے بہت ساروں کو, ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اور ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں نے تو ہر جگہ اچھے لوگ دیکھے, اتنے اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ وہ ہیں جو صبر اور شکر والے, جو نرمی والے ہیں, اور جس کو کہیں کہ ایفرٹس کرنے والے, کون سی, ٹائرڈ لیس, اینڈ لیس ایفرٹ کرنی پڑیں گی اس اینڈ لیس پلیئر کو لینے کے لیے, پانے کے لیے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر نرمی لائیں. آپ حق پہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ نیگیٹیوٹی میں پڑھیں گے انشاءاللہ دو دن کے بعد سے, لیکن آپ کو نرمی بہرحال چاہیے. اور آپ کو آج بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کی بجائے ابو بکر پہلے خلیفہ کیوں بنے, پہلے بھی بات ہوئی تھی عشرہ مبشرہ کے سیشن میں, آج اس موقع پہ کہوں نہ تو کمی آ جائے گی, ابو بکر کی نرمی کی وجہ سے. نبی کی رخصتی سے جو گھڑا پڑ گیا تھا نا, جو زخم پڑ گئے تھے امت مسلمہ پہ, اس کو صرف اور صرف ابو بکر کی نرمی ہی بھر سکتی تھی. زخم پہ نرم سا بینڈیج لگاتے ہیں, روئی لگاتے ہیں, مرہم لگاتے ہیں, اس کو پکڑ کے اور نہیں کھرچتے. اگر ایک دم حضرت عمر کو بنا دیا جاتا خلیفہ تو کئی مسئلے کھڑے ہوتے. ہاں وہ دو سال میں فل ان دی بلینک کر کے ابو بکر نے حالات اچھے کر دیے, اس کے بعد پھر عمر کو اب چابیاں دے کر دنیا سے چلے گئے. آپ کا میرا یہی کام ہے, جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمائیے, جہاں گرمی کی ضرورت وہاں گرمائیے, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. آپ سب بھی اب لیڈر ہیں فیوچر کے انشاءاللہ. اپنے اندر یہ خوبی, ماں ہے کہ ٹیچر ہیں, آپ کا کام علم دینا نہیں ہے, ٹیچر علم کو نہیں دیتا, وہ تو کتاب دیتی ہے, علم کی بھوک دیتا ہے استاد. استاد وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر اپنا علم تھوڑا لگے, اور استاد وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر انسان کو اور سیکھنے کا شوق ہے, موٹیویٹر ہوتا ہے, موٹیویشن دیتا ہے. لیکن استاد کے اندر اگر نرمی نہ ہو, یاد رکھیے کتنے اعلیٰ استاد ہیں, اتنے ہیں, لیکن ان کے پاس وہی بات ہے کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, وہ خوبی نہیں ہے. और आज देख लीजिए फायदा नहीं हो रहा, उम्मतें नहीं बनती भी दिख रही, वजह क्या है? सामने लिखी भी है। तो मांगिए दुआ अल्लाह से नरमी की हर मामले में। अच्छा, हमारी नरमी वो है जो असूल तोड़ने की है। बच्चे ने कहा आइसक्रीम खाऊंगा, अच्छा माँ नरम मिजाज जाओ खा लो। बच्चा कहता मैं तो दोस्ती करूंगा लड़की से, आप कहते हैं कर लीजिए चाहिए, मैं बड़ी नरम माँ हूँ, ये नरमी नहीं है। घूर के देखिए, आधी आंख से देखिए बच्चे की जान निकल जाए। नरमी और चीज है, अभी हम वो नरमी नहीं समझे जो बिगाड़ने वाली नरमी है। गलत पे तो एक सवाल नहीं पैदा होता, अल्लाह के नबी इतने नरम तो नहीं थे? तो कभी लाल कहते अल्लाह के नबी आज मैं नहीं फजर पढ़ता, माँ नरम मिजाज है, अच्छा बेटा फजर नहीं पढ़ी, 8 बजे उठ के पढ़ना, मैं बड़ी नरम मिजाज हूँ। ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। माँ ऐसी होनी चाहिए कि देखो तो मुलायम मरहम, और घूरे तो ऐसे लगे जान निकल गई। ये 2-in-1 नहीं, ये 5-6-in-1 होता है, फिर कहीं जाके किरदार। और यही माँ और यही उस्ताद है, कहाँ नरम होना है कहाँ गर्म होना है। यकीन कीजिए ये आसान नहीं है। उस्ताद बैठ जाए नरम होकर, पढ़ेंगे आप लोग, दे दो छुट्टी, सीखिए कहाँ नरम का ये सीखना होता है उस्तादों से। और बाकी बातें क्या, इल्म तो आपको बहुत मिलेगा अभी, अब तो आपके आगे दरवाजे ही खुलते जाएंगे, लेकिन दुआ कीजिए अपने लिए, अल्लाह ज़ाया ना करना। और ज्यादा दे के जा सकते हैं दुनिया को, थोड़ा ना देकर जाएं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह जितना है अंदर वो निकाल के जाना, तब लेके जाना अंदर, ना कुछ साथ चला जाए। और मसला क्या है कि जितना निकालो उतना बढ़ता जाता है, ये ख़त्म नहीं होती चीज़ें। इसके लिए ज़रूरत है कि हम झुके, अपने अंदर नरमी लेकर आए। तरबियत के सारे असूल कुरान सुन्नत से ले लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे खैर ही खैर आ जाएगी। ठीक है कि ये एक एक कॉन्सेप्ट इस चीज़ का तकाजा करता है कि हम इस पर घंटों बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से जो आज ये 4 वीक में हम पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने 30 दिनों में पढ़ी हुई है। 30 दिन में हमने अखलाक का टॉपिक पूरा किया था तज़किया में, DQ 10, DQ 10 हर पारे का एक थीम है, और पूरे पारे में 3 घंटों में मेरा लगा कि 45 मिनट प्लस मैं सिर्फ उस टॉपिक पे बीच बीच में बातें करती थी, बाकी वक्त में तर्जुमा होता था। याद है पहला पारा हसद पे है, दूसरा सब्र पे है, तीसरा शायद किसी और पे होगा। अगला क्राइटीरियन किसी इंसान को परखने का हया है, और अल्लाह के नबी ने जो एक दूसरे के साथ अखलाकियात की बात की है ना, इसको इसकी रोशनी में ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी आज बड़ा मिसकंसेप्शन है। आज हमारे यहाँ हया क्या है? पानी भरते हुए हीरोइन का हीरो को देख के उछलना। याद रखिए ये अदाएं हैं, ये हया नहीं है। हमने हया फिल्मों से सीखी, अदाकाराओं से सीखी, ये अदाएं हैं निरी, ये निरी अदाएं हैं। हया इससे बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो अब हया को समझिए क्या है, फिर आपको चंद हदीसें लिखाऊंगी, जितना भी पढ़ सके आपके नसीब में होगा, लेकिन जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो फिर याद रखेंगे। देखिए हया क्या है, यानी अगर आप पहले किसी की चीज़ को समझते हैं तो फिर ही उसके बारे में बात करते हैं ना, है क्या, करती क्या है, कैसे होगी, क्या मामलात होंगे। तो हया झिझक है। अल्लाह के नबी की एक हदीस दीन को बहुत समझने में मददगार हुई मेरे लिए, वो क्या, फैज लम तस्तही फसना माशेता। आपने फरमाया कि पहले सहीफों में एक बात थी, क्या, जब तेरे अंदर हया न रहे तो जो चाहे कर, जो चाहे कर। हया झिझक उठने का नाम है। एक दफा झिझक जब खुल जाती है ना, दोबारा वापस नहीं आती, बिलीव मी। हया इंसान को खूबसूरत कर देती है। हया क्या है? अल्लाह ने जो किसी एक में चीज़ तलब की है ना, वो हया है। और हया के अंदर इंसान अपने आप को एक जगह पे सेट कर लेता है। पहली बात लिखी है कि हया पैगंबरों की सुन्नत है, सारे नबी हयादार थे। तिर्मिज़ी की रिवायत है 1080, हज़रत अबू अयूब से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 चीज़ें सब पैगंबरों की सुन्नत है। नंबर 1 हया, इतर लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। दूसरी बात लिखी है हया इस्लाम की पहचान है, इब्ने माजा 4181, अनस से रिवायत है, इन्न लिकुल्ली दीनिन खुलुकन व खुस्नुल इस्लामिल हया। हर दीन वालों में एक खसलत होती है, मुराद क्या है कि जो इस दीन वालों पर गालिब होती है, और इस्लाम की खसलत हया है, मुरादिया के हर मुसलमान में हया होनी चाहिए। तीसरी बात लिखिए कि हया ईमान में से है, यानी इसका मुकाम किधर है? ईमान के साथ है। तिर्मिजी 2009, अबू हुरैरा से रिवायत है, हया ईमान का एक टुकड़ा है और ईमान का इंजाम जन्नत है, और बेहयाई जुल्म है और जुल्म का इंजाम दोजख है। कहाँ से बात चली? अगली बहुत ही खूबसूरत इसकी शान क्या है? हया ईमान की शाख है। तिर्मिजी की रिवायत है 2027, ईमान की दो शाखें हैं। ज़रा सा सोचिए और फिर अपने ऊपर लेंगे। नंबर एक, हया, और कलाम में तामुल करना। तामुल क्या होता है? कलाम करते वक्त ठहराओ, आराम से बात करना, मुरादिया के फौरन ना बोल देना। और दो शाखें निफाक की हैं, वो भी लिख लें, बेहुदा गोई, हया की ऑपोजिट हो गई ना, और बहुत कलाम करना, खूब बोलना। कुछ लोग खुद कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं कहती हूँ शुक्र है आपको ये पता तो है आप बहुत बोलती हैं। बहुत सारे बहुत बोलने वाले खुद को मानते ही नहीं कि हम बहुत बोलते हैं, कहते मैं छोटी सी बात की 15 मिनट में बंद कर दिया फोन। हाँ, तो बहुत नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तिर्मिजी की रिवायत है 2027। एक और रिवायत है बुखारी की 6118, नबी सल्लम का गुजर एक शख्स के पास से हुआ जो अपने भाई पर हिया की वजह से नाराज हो रहा था और कह रहा था तुम बहुत शर्माते हो। वो कह रहा था कि तुम इसकी वजह से अपना नुकसान कर लेते हो। अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी तो फरमाया इसे छोड़ दो, मत ऐसे ना को इसको, क्योंकि हया तो ईमान में से है। अच्छा, हमारे यहाँ हया को औरतों के साथ जोड़ दिया गया ना, और मर्द तो बेहया होंगे? नहीं, हया का ताल्लुक औरतों से नहीं है, ज्यादा मर्दों से है। दोनों के मिलने से हया पूरी होती है। फिर अगली बात नोट कीजिए कि हया जिस चीज में होगी उसको खूबसूरत कर देगी। तिर्मिजी की रिवायत 1974, अनस रावी है, फरमाए बदगुई जिस चीज में भी हो इसको खराब कर देती है, और हया जिस चीज में भी हो इसको जीनत दे देती है। फिर अगला पॉइंट लिखिए कि हया खैर ही खैर लाएगी हमेशा। कैसे? मुस्लिम की रिवायत 156, इमरान बिन हुसैन रावी हैं, हया से खैर ही हासिल होती है। इनसे ये बात सुनकर किसी ने कहा कि हया से वकार हासिल होता है। आप देखिए, बाहया बंदा बहुत पुरवकार होता है। और फिर सहाबी ने कहा कि मैं अल्लाह के नबी का फरमान बयान कर रहा हूँ और तुम हिकमत की बातें कर रहे हो। यानी अल्लाह के नबी ने कहा हया से खैर होती है, उन्होंने हिकमत की बात वकार पे ले गए। मुराद यह कि हया खूबसूरत चीज़ है। क्या नबी सल्लम भी बाहया थे कि नहीं? क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ ये सवाल आ जाता है कि औरतें सिर्फ बाहया होंगी, तो लिख लीजिए बुखारी की रिवायत 6119, हज़रत अबू सईद अल खुदरी इसके रावी हैं, कहते हैं कान रसूलुल्लाही अशद्द मिनल अज़राई फी हिज़रिहा, अल्लाह के नबी पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे। सुभान अल्लाह। किससे हया करनी है? सबसे पहले अल्लाह से हया। रिवायत अल्लाह के नबी की, पूछा गया अल्लाह के नबी कि हम अपने सतर छुपाएं या छोड़ दें, किससे छपाएं किससे खोल दें? आपने फरमाया अपने सतर को छुपाओ अपनी बीवी के या जिसके मालिक हो उसके सिवा। कहा अल्लाह के नबी जबकि लोग आपस में मिले जुले हों, आपने फरमाया अगर तुझसे हो सके तो कोई शख्स तेरी शर्मगाह ना देखे ना तो उसको दिखा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल जब हम में से कोई अकेला हो फिर क्या करे, यानी कि अकेले में भी कपड़े अच्छे पहनने क्या करना है? तो आपने फरमाया अल्लाह ज़्यादा मुस्तहक है बनिस्बत आदमियों के कि उससे हया की जाए, लिहाजा तन्हाई में भी बरहना नहीं होना चाहिए और अल्लाह से शर्म करनी चाहिए। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2769। और जो मैंने शुरू में रिवायत आपको इंट्रो में दी कि फ़ैज़ लम तस्तही फसना माशीता, तो ये अल्फाज थे बुखारी के 6120, अबू मसूद इसके रावी हैं, और ये अगले लोगों के कलाम में से था। आज किस चीज़ के जनाजे निकल गए? हया के जनाजे निकल गए। आज मर्दों ने औरतों के दुपट्टे उठा लिए, औरतों ने मर्दों के कपड़े उठा लिए। आज बेहयाई हमारी कपड़ों तक रह गई। हम उसको भी कहें तो अगर पूरी बात ना हो, लेकिन याद रखिए हया होती दिल में, इजहार लिबास से होता है। यानी हया का जाहरी ताल्लुक लिबास से या दुपट्टे से या स्काफ से या अबाये से दिखता है ना, लेकिन इसका जो मेन कनेक्शन है वो अंदर होता है। अगर एक बाहया औरत है कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी जिसमें जिस्म झलके, जिस्म के उभार नुमाया हो, दूसरे देखे, इवन औरतों में, इवन औरतों में। और ये फतवे की नहीं तकवे की बातें हैं। कुरान में कोई मिसाल है हया की? बिल्कुल है, लफ्ज़ भी आया है सूरत कसस 25, फदात वहदा हुमा तमशी अलस्तहया। इतने में दोनों औरतों में से एक मूसा की तरफ शर्मो हया के साथ चलती हुई आई, और हज़रत उमर ने इसकी जो तशबीह बयान की थी वो तफसीर में आपको लिखाई थी कि वो बल खाती जिस्म को फैलाती नहीं आई बल्कि वो हया से आई। और इसकी तफसीर में ये भी बताया था कि मूसा को आगे कर दिया, खुद पीछे रह गई, हाथ से कंकड़ डालती जाती जिधर मोड़ना था, ये हया है। तो बाहया औरतें मर्दों से गुजरते बैठते देखते हुए अपने आप को चेक कर रही होती हैं कि दूसरों की हम नज़र हमारे जिस्म पर कहाँ पड़ रही है। फिर इसके बाद अगली रिवायत जो मैंने आपको ईमान वाली लिखाई थी, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। बुखारी की रिवायत किताबुल ईमान नंबर 9। और अगली बात बहुत ही खूबसूरत है, पूरी हदीस सुनाऊंगी तो समझेंगे। हदीस है तिरमिज़ी की 2009, किताब बिर वसीला, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। अल हया मिन अल ईमान, हया ईमान में से है। वल ईमान फिल जन्ना, और ईमान जन्नत में ले जाता है। कितनी प्यारी बात हो गई। लेकिन वल बजाओ मिन अल जफाई, और बेहयाई कूड़ा करकट है। जाके डिक्शनरी में लफ्ज़ देख लीजिए, जफा किसको कहते हैं? ये जब हम कहते हैं ना वफा के मुकाबले में जफा, वो भी यही है, कूड़ा करकट। गंदे पानी होते हैं ना नाले, उसके ऊपर जो कूड़ा करकट आता है उसको जफा कहते हैं। और वल जफा फिन्नार, कूड़ा करकट आग में जाता है। तो बेहयाई फैलाने वाले, करने कराने वाले जहन्नुम में जाएंगे। और हया ईमान का हिस्सा भी है, बुखारी 24 में आप नोट कर सकते हैं बाद में। और इसी तरह से जिस मामले में हया होगी खैरी होगी। अब आप देखिए कि दीन का रुख देखिए, हमारे दीन ने जितने औरत मर्द के जाबते मुकरर किए, तन्हा ना हो औरत मर्द, अकेले ना हो दो, फिर इसी तरह मर्दों और औरतों की मिक्सिंग ना हो, और सेग्रीगेशन क्यों हो, हया का तकाजा है। क्योंकि हया होगी तो आप कभी भी ऐसी जगहों पे अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे। और आज इसको अपोजिट पे ले लें तो जिधर मर्जी ले जाइए, दुल्हन के कपड़े हया वाले हैं, शादियों की महफिलें हयादार महफिलें हैं, शॉपिंग करने जाएं बाज़ारों का माहौल हयादार है, सफ़र कर लीजिए हयादार है, खाना खाने होटल में चले जाएं हया है। आज गैरों को ना रोइए, अपनों को रोने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें हया दे दे, हया बहुत ज़रूरी है।